एल क्लास चल रहा था 2 फरवरी 1967, दूसरा पेज का मध्यांत। बात चल रही थी, अभी बाप बच्चों को समझाते रहते हैं कि पावन बनना है तो बाप को याद करो। बाप भी पहले गुड मॉर्निंग करके फिर बच्चों को शिक्षा देते हैं। क्या अव्यक्त बाप दादा या ब्रह्मा बाबा गुलजार दादी के द्वारा क्या करते हैं? गुड मॉर्निंग करते हैं या कुछ और करते हैं? क्या करते हैं? गुड नाइट करते हैं। फिर शिक्षा देते हैं? नहीं, लेकिन बाप पहले बच्चों के सामने आकर के क्या करते हैं? गुड मॉर्निंग करते हैं, फिर शिक्षा देते हैं। कौन से बच्चों को? है शूद्रों को? शूद्रों को नहीं, शूद्रों को पहले ब्राह्मण बनाते हैं ब्रह्मा के द्वारा, फिर ब्राह्मणों को बैठ शिक्षा देते हैं, और शिक्षा देने से पहले बच्चों से आकर के गुड मॉर्निंग करते हैं। कब करते हैं गुड मॉर्निंग? कब करते हैं? मॉर्निंग में करते हैं। कब करते हैं? टाइम है कुछ है?
संगम
है मॉर्निंग का भी कोई टाइम खास है क्या?
अमृत वेला में।
अमृत वेला, अमृत वेला का भी कोई खास टाइम है? नहीं,
1 बजे
है।
1 बजे,
1 बजे, 1 बजे से पहले गुड मॉर्निंग नहीं होती? बाप विदेशी बन के आए हैं, रात्रि के 12 बजे जब बाप आते हैं तो बच्चों से पहले गुड मॉर्निंग करते हैं। क्या सुहाना सवेरा सतयुग आ गया, इसकी 10 साल पहले घोषणा की थी। क्या घोषणा की थी? 10 वर्ष में पुरानी दुनिया का विनाश और नई दुनिया की स्थापना हो जावेगी। तो कहाँ हो गई स्थापना? कहाँ आया गुड मॉर्निंग? सतयुग रूपी सवेरा आया कहीं 10 साल के बाद? 76 में कहीं नहीं आया है। अरे पहले तो बुद्धि में आएगा, सवेरा कहाँ आएगा? पहले तो तीरी पे बहस चलाता हूँ। तीरी माना हथेली, हथेली माना बुद्धि रूपी हथेली में, तुम्हारी बुद्धि रूपी हथेली में आकर के सतयुग रूपी सवेरे की सौगात देता हूँ। एक हाथ में तीरी में बहस्त और दूसरे हाथ में हाथ पसार देता हूँ। लो, क्या लो? है तन मन धन समय संपर्क संबंध सब ईश्वरीय सेवा में लगाओ तो मैं तुम्हें विश्व की बादशाही का सवेरा दे देता हूँ। फिर दिया किसी को है? हाँ जी, तो हमें भी दे दो। सतयुग रूपी सवेरा बाप आकर के बुद्ध रूपी हथेली में देते हैं। माने कोई नंबरवार बच्चे हैं जिनकी बुद्धि में ये बैठता है, एडवांस नॉलेज में आने से ही बैठता है कि अब हमें जो पाना था सो पा लिया। तो बाप पहले गुड मॉर्निंग करते हैं, फिर बच्चों को शिक्षा देते हैं। शिक्षा देते हैं, पहले बाप की याद में बैठो, चलते फिरते बाप को याद करो। सिर्फ बैठ के याद नहीं करो, क्या कर्मेंद्रियों से कर्म करते हुए बाप को याद करो। क्योंकि जन्म जन्मांतर का सिर पर बोझा बहुत है। इस बात का बोझा, अच्छे बुरे कर्म किए हैं ना, तो जो पाप कर्म किए हैं कर्मेंद्रियों से उनका बोझा बहुत है। सीढ़ी उतरते उतरते तुमने 84 जन्म लिए, 84 जन्मों में भी सीढ़ी उतरे, ऐसे नहीं 63 जन्म में ही उतरते। जो पहले पहले 21 जन्म है उनमें भी सीढ़ी उतरे, अभी फिर एक ही जन्म है चरती कला का, 84 जन्म उतरती कला के और एक जन्म है चढ़ती कला का। जितना बाप को याद करते रहेंगे उतना खुशी भी होगी और ताकत मिलेगी। बहुत बच्चे हैं जिनको आगे नंबर में रखा जाता है, रखा तो जाता है आगे नंबर में, बैठते भी हैं आगे आगे। तलहटी में जब बाणी चलती है तो कौन आगे आगे बैठते हैं? दीदी दादी दादाएं सब आगे आगे बैठ जाते हैं। तो बोला आगे नंबर में रखा तो जाता है परंतु वो याद में तीखे नहीं है। क्यों तीखे नहीं है? याद भी तब तीखी होगी जितना बुद्धि में गहरा ज्ञान बैठा होगा। ज्ञान में कमजोरी होगी, पहचान में कमजोरी होगी, ज्ञान माने ज्ञानकारी, तो याद अच्छी तरह से नहीं आवेगी। और जिनकी बुद्धि में बाप का बाप की पहचान ही न बैठी हो तो उनको बाप की याद कैसे आवेगी? भले आगे आगे बैठ जाते परंतु वो पावर नहीं मिल सकती। ज्ञान में तीखापन अलग बात और याद में तीखा होना अलग बात। याद की यात्रा जैसे है ही नहीं। ज्ञान में तो ऐसे बच्चे हैं जो बाबा से भी तीखे चले जाते हैं, क्योंकि दूसरों को समझाने की प्रैक्टिस बहुत रहती है, बहुतों से मिलते रहते हैं तो ज्ञान के पॉइंट्स पक्के होते रहते हैं। बाप तो बच्चों की महिमा करते हैं, यह भी नंबर वन में जाते हैं तो जरूर मेहनत भी करते होंगे। कौन? ब्रह्मा बाबा। तुम हमेशा ये समझो कि हमें शिव बाबा समझाए रहे हैं, हमें समझाने वाला ब्रह्मा बाबा नहीं है। कौन समझाने वाला है? शिव बाबा समझा रहे हैं। ब्रह्मा बाबा की सोल तो अभी भी गुलजार दादी में जाकर के गुड नाइट करती है। सतगुरु की सवेरा उनके लिए जैसे अभी आया ही नहीं, उनकी बुद्धि में अभी ज्ञान का मूल पॉइंट नहीं बैठा। क्या गीता का भगवान कृष्ण नहीं है? अगर कृष्ण नहीं है तो फिर कौन है? शिव बाबा तो पहले से ही कहते चले आए, चित्र बनाए दिए, शिव ज्योति बिंदु शिवलिंग का चित्र बनाए दिया एक तरफ और दूसरी तरफ कृष्ण का चित्र बनाए दिया और पूछा जज करो गीता का भगवान कौन, ये शिवलिंग या कृष्ण? कृष्ण बच्चे के रूप में दिखाई दिया तो बच्चा क्या गीता का ज्ञान सुनाएगा? बच्चा गीतापति भगवान बनेगा? गीता माता है तो गीता माता का पति भी बच्चा होना चाहिए क्या? उन्होंने बच्चा बनाई दिया। किन्होंने? बच्चे को अगर गीता माता का पति बना दिया जाए तो इससे बड़ा पाप और क्या होगा? यही भारी भूल है, जिस भारी भूल के कारण भारत का सत्यानाश हो गया। द्वापर के आदि में फिर भी चाल अच्छी थी। शास्त्रों में शुरू शुरुआत में गीता में कृष्ण का नाम नहीं था, बाद में कृष्ण के पुजारियों ने जो साकार उपासक थे उन्होंने कृष्ण का नाम जोड़ दिया और निराकार के प्रति श्रद्धा घटाई दी। तो भगवान जब कृष्ण हो गया तो लोग समझेंगे कि ज्ञान देने वाला कृष्ण ही होगा, परंतु बाप कहते हैं तुम हमेशा यह समझो कि शिव बाबा हमको समझाए रहे हैं, हमको समझाने वाला कोई कृष्ण बच्चा या ब्रह्मा की सोल नहीं है। तुम ऐसा समझेंगे तो तुम्हारा बुद्धि का योग बाबा की तरफ लगा रहेगा, नहीं तो क्या होगा, जो दीदी दादी दादाएं शरीर छोड़ते जाते हैं उनका बुद्धि योग कहां लगा रहता है, है? अरे ब्रह्मा बाबा को याद करते हैं तो उनकी तरफ बुद्धि का योग लगा रहता है, उनकी बुद्धि में यही बैठा हुआ है कि गीता का साकार भगवान कृष्ण उर्फ दादा लेखराज ही था, इसके अलावा कोई और हो ही नहीं सकता। ये भी सिखाते होंगे, सिखाते होंगे। ये माने कौन? हाँ, जब इनकी बुद्धि में बैठ जाएगा तो ये भी सिखाएंगे। अभी तो कृष्ण बच्चा पढ़ रहा है, एडवांस नॉलेज ले रहा है, ये नॉलेज भी जब पूरी हो जाए तब ये भी सिखाएंगे। फिर भी कहते हैं बाबा को याद करो, इसको समझाने के लिए चित्र भी देते हैं, इसको समझाने के लिए किसका चित्र दिया है? शिव बाबा का चित्र है क्या? त्रिमुख के चित्र में इशारा तो दिया है, त्रिमुख का चित्र लेकर के बैठ जाओ अथवा बैज लेकर के बैठ जाओ, किसी को समझाओ ये बाप है ये दादा है। तो त्रिमूर्ति के चित्र में कौन बाप है और कौन दादा है? तथाकथित ब्रह्मा कुमार तो बिंदी की तरफ इशारा करेंगे यह बाप है और ब्रह्मा की तरफ इशारा करेंगे यह दादा है, लेकिन नहीं, बाप दादा जब कहते हैं तो बाप बड़ा है और दादा छोटा है। बड़ा बड़ा किस आधार पर होता है? बड़ा बड़ा तब होता है जब कोई बड़ा काम करके दिखा। दादा ने उतना बड़ा काम नहीं किया होगा जितना बड़ा कार्य बाप ने करके दिखाया होगा। बाप और दादा दोनों में सुप्रीम सोल प्रवेश करते हैं। दादा है बड़ा भाई, 500 करोड़ पत्तों में पहला पत्ता बड़ा भाई, और सो पहले पत्ते को जन्म देने वाला कौन? बाप, बीज। तो जो बीज है वो नई दुनिया का फाउंडेशन डालने वाला है, और जो नई दुनिया बनती है उसमें कृष्ण की सोल जन्म लेकर के प्राप्ति करती है, युवराज बनती है, प्रिंस बनती है। बाप आते हैं तो इनकी भी महिमा करते हैं, और जो बाप है सारी सृष्टि का, मनुष्य सृष्टि का बाप, उसको भी महिमा बंद बनाते हैं। अच्छा, महिमा जो करते हैं तो महिमा की कुछ बात सुनाते होंगे ना, कहते हैं फलाना बहुत धनवान है, तो महिमा की या ग्लानी की? क्या किया? कोई धनवान होता है तो धनवान कब बनता है? आज की दुनिया की बात नहीं कर रहे, आज की दुनिया के तो लखपति करोड़पति झूठा धंधा करके बनते हैं, लेकिन जो सच्चे धनवान होते हैं, चाहे ज्ञान के धनवान हो चाहे स्थूल धन के धनवान हो, वो मेहनत करते हैं तो धनवान बनते हैं। चलो पूर्व जन्म में मेहनत की हो, पूर्व जन्म में बहुत मेहनत की होगी दान पुण्य करने की, तो अगले जन्म में ऑटोमेटिक वो धनवान बनते हैं। तो ये भी महिमा हुई ना। कोई कोई धनवान होते हैं रिलीजियस माइंडेड भी होते हैं। 2 फरवरी 1967 की वाणी का दूसरा पेज। अब तुम तो ये जानते हो ऊंचते ऊंच तो भगवान है, धनवान ऊंचते ऊंचे नहीं है, ऊंचते ऊंच भगवान है। कुबेर को ऊंचते ऊंच नहीं कहेंगे, क्यों? कुबेर बहुत धनवान माना जाता है, लेकिन भगवान से ऊंचा नहीं माना जाता। ऊंचते ऊंच कहेंगे तो जरूर इस दुनिया की बात होगी या शांति धाम और सुखधाम की बात होगी। इस दुनिया में ही ऊंचते ऊंच और नीचते नीचे होते हैं। कहते भी हैं बरोबर ऊंचते ऊंचे हैं, फिर बोलो उनकी बायोग्राफी तो बताओ। तो कह देते हैं वो सर्वव्यापी है। तो ऊंचते ऊंच भगवान ही कहा जाता है और वो निराकार को कहा जाता है, है? निराकार और वो ऊंचते ऊंच। सब आत्माएं कैसी है, निराकार है या साकार है? तो आत्माएं सब निराकार है तो सभी ऊंचते ऊंच हो गई।
इसमें निराकार स्थिति जाम,
निराकार का मतलब जब ऊंचते ऊंचे निराकार कहा जाता है तो उससे साबित होता है कि उसने निराकारी स्टेज में रह करके जरूर कोई ऊंचा कार्य किया है। देवहान की स्टेज में रह करके वो ऊंचा कार्य नहीं हो सकता, वो आकर के शरीर धारण करते हैं, है तो निराकार फिर भी शरीर धारण करते हैं। एक भगवान के बच्चे सब भाई भाई है, सब आत्माएं भाई भाई है, अभी इस शरीर में विराजमान है। क्या कहा? है तो भाई भाई, लेकिन वो आत्माएं जो निराकार है वो सब शरीर में विराजमान है और सब अकाल मूर्त है। क्या बिंदु बिंदु आत्माएं उनको कोई काल खाता है क्या? सब अकाल मूर्त है। जब सब आत्माएं अकाल मूर्त है तो फिर एक को क्यों कहा जाता है कालों का काल महाकाल अकाल मूर्त है? इससे क्या साबित हुआ? बल सब आत्माएं ज्योति बिंदु है, निराकार है, अविनाशी है, उनका कभी विनाश नहीं होता, उनको कभी काल नहीं खाता, काल शरीर को खाता है। लेकिन वो निराकार जो एक कहा जाता है अकाल मूर्त, वो जिस शरीर में प्रवेश करता है मुकर्रर रूप से, उसको दुनिया में कोई काल को खाते हुए देखता नहीं, इसलिए वो कालों का काल महाकाल कहा जाता है। सारी दुनिया को काल खा जाएगा परंतु उसको कोई भी काल को खाते हुए देख नहीं सकेगा। ये अकाल मूर्त का तत्व है। अकाल तत्व कोई और खास चीज नहीं होती है, खास चीज नहीं होती, ये अकाल मूर्त का तख्त है। इसके अलावा और कोई खास चीज नहीं होती है अकाल मूर्त का तख्त, ये तख्त है अकाल मूर्त का, अकाल मूर्त का अकाल तख्त। आत्मा तो सब अकाल है, इतनी अति सूक्ष्म बातें हैं। बाप है वो भी निराकार, अब वो अपना तख्त कहां से लावेंगे? निराकार बाप अपना तख्त कहां से लावेंगे? बाप कहते हैं मेरा भी यह तख्त है। क्या ऐसे नहीं कि तुम्हारी आत्मा का ही तख्त है? मेरा भी यह तख्त है। यह तख्त कह के किस तरफ इशारा किया है? ब्रह्मा की तरफ। ब्रह्मा की तरफ कहे तो ये तख्त है तो वो अकाल मूर्त है, उसको तो काल खा गया, तो यह तख्त है ये कह के किस तरफ इशारा किया? जिसको इमर्ज करके बोलते हैं उसकी तरफ इशारा किया, मेरा भी अकाल तख्त यह है। मैं आकर के इस तख्त का भी लोन लेता हूं। अब किसके लिए कहा? ब्रह्मा के लिए। ब्रह्मा के साधारण बूढ़े तन में आकर के बैठता हूं ना, अब तुम जान गए हो सब आत्माओं का ये तख्त है। मनुष्यों की बात की जाती है, कोई जानवरों की तो बात नहीं है। पहले मनुष्य है जो जानवरों से भी बदतर हो गए हैं, वो तो सुधर जाएं, किसको सुनावेंगे ज्ञान? क्या जानवरों के तख्त पर आकर के बैठ विराजमान होंगे? भक्ति मार्ग में तो जानवरों के अवतार भी दिखाई दिए, तो क्या भगवान जानवरों को सुधारने के लिए आता है? जानवरों को सुधारने के लिए तो नहीं आता होगा, इसको सुधारने के लिए आता है। जो जानवरों से भी बदतर बन जाते हैं उनको आकर के सुधारता हूं, और उनको आकर के बंदरों से मंदिर लायक बनाता हूं। तो मनुष्य तो पहले सुधरे। कोई जानवरों की बात पूछे तो पहले कहो अपना तो सुधार कर लो, जानवरों की चिंता बाद में करना। सचमुच में जानवर भी बड़े अच्छे अच्छे फर्स्ट क्लास होते, उनमें कीचड़ा आदि कुछ भी नहीं होगा। किंग के महल में कीचड़ा आदि पड़ जावे तो दंड डाल देवे, जरा भी कीचड़ा महल के अंदर हो नहीं सकता। क्या कौन सा महल है जो संगठन रूपी महल बनेगा राजाओं का? उन संगठन रूपी महलों में कोई कीचड़ा व्यभिचार का नहीं डाल सकता, वहां बहुत खबरदारी रहती है। कहां? उस राजाओं के संगठन रूपी महल में बहुत खबरदारी रहती है। पहरे पर सदैव कोई न कोई बना रहता है, कब कोई जानवर आदि अंदर घुस न सके। जानवरों के लिए पहरा लगाया जाता है। जो जानवर बुद्धि मनुष्य है, जो जानवरों की तरह बुद्धि चलाने वाले हैं, ऐसे जानवर बुद्धि वहां प्रवेश नहीं कर सकते। इसलिए बोला तुम पांडवों का किला भी ऐसा बन जाएगा जो कोई भी उसमें पांव भी रख नहीं सकेगा, अंदर आ न सके, बहुत सफाई रहती। लक्ष्मी नारायण के मंदिर में कितनी सफाई रहती, शंकर पार्वती के मंदिर में कबूतर भी दिखाते हैं। ये क्या बात हुई? राजाओं के मंदिर में कोई जानवर घुस न सके। मंदिर माने घर, महल, अपना परिवार, घर परिवार, उसमें कोई जानवर बुद्धि प्रवेश नहीं कर सकता। और जो राजा बनाने वाला है कौन? शंकर पार्वती। जो राजा, राजाओं का राजा बनाने वाले हैं, उनके मंदिर में क्या होता है? है, उनके मंदिर में कबूतर रहते हैं। वो कबूतर क्या करते हैं, उनको ज्ञान की कंठी होती है क्या? ज्ञान सुनने सुनाने के लिए वहां बैठे हुए हैं क्या? है नहीं, काहे के लिए बैठे हैं? है अब वो ऊपर कचरा डालते रहते हैं, है कहां की बात है। इस बात को सुन के गुरु लोग नाराज हो जाते हैं। क्या सुन के बोला? शंकर पार्वती के मंदिर में कबूतर दिखाते हैं। हाँ, कबूतर भी दो प्रकार के होते हैं, एक काले कबूतर और एक सफेद कबूतर। गंध तो दोनों करते होंगे, चाहे सफेद हो चाहे काले हो, कबूतर होंगे तो कितना जरूर करते होंगे। आप देखो शास्त्रों में तो बहुत दंत कथाएं लिखती हैं, अरे दंत कथाएं लिखती हैं तो बोलते काहे के लिए, जरूर कोई खास बात है ना? क्या खास बात हुई? कि शिव बाबा जब आते हैं, ब्राह्मणों की दुनिया बनाते हैं, तो उस ब्राह्मणों की दुनिया में नौ कुरी के ब्राह्मण होते हैं, सब श्रेष्ठ नहीं होते, कोई भ्रष्टकुरी वाले भी होते। श्रेष्ठ कुरी का एक ही होता है जो श्रेष्ठ से श्रेष्ठ है, तो वो तो यज्ञ के आदि में ही छोड़ करके चले गए। कौन? सूर्यवंशी चले गए, बाकी क्या बचे? बाकी बचे चंद्रवंशी, और चंद्रमा की गोद में पलने वाले इस्लामी बौद्ध क्रिश्चियन जो भी दूसरे धर्म के विदेशी विधर्मी आत्माएं थी, वो यज्ञ के आदि से लेकर के अब तक भी उनकी रहबरी में पल रही है। तो जो दूसरे धर्म में कन्वर्ट होने वाली है ब्राह्मण हैं कच्चे पक्के, वो ब्राह्मण बनकर के ब्रह्मा के मंदिर में विराजमान होंगे तो वो क्या करेंगे? निर्विकारी बनेंगे या 63 जन्मों के अपने हिसाब किताब के अनुसार मंदिर में भी गंध करते रहेंगे? पहले निर्विकारी कौन बनेंगे, सूर्यवंशी बनेंगे या इस्लामी बौद्ध क्रिश्चियन बनेंगे? सूर्यवंशी पहले निर्विकारी बनते, और बाकी जो है वो सब गंध करते रहते। हाँ, सूर्यवंशी थोड़े समय के लिए आते हैं, जैसे शास्त्रों में दिखाया है कि कंठी वाले तोते भी मंदिर में आ गए। शंकर जी कथा सुनाए रहे थे और कबूतर बैठे हूं 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 आवाज कर रहे थे, तो शंकर जी ने सुना, हाँ ये कथा सुनते हो, बोले वाले तो है कौन? कबूतर नहीं, शिव बाबा। तो वो घूम घूम की आवाज सुन के उन्होंने समझा कि पार्वती बड़े ध्यान से कथा सुन रही। तो कबूतर गंध भी करते रहते हैं, कथा वथा तो कुछ सुनते नहीं, आवाज करते हैं। और तोते कोई अंदर बैठ करके आवाज नहीं करते हैं, वो थोड़ी कथा सुनते हैं और बाहर जाकर के बहुत आवाज कर देते हैं, ज्ञान की चारों तरफ ज्ञान की आवाज करते हैं। तो उनको ज्ञान की कंठी दिखाई गई। तो देखो शास्त्रों में कैसी दंत कथाएं लगाई है। अब जानवर पक्षियों की तो बात है ही नहीं, बाप बैठे बच्चों को ये बातें समझाते हैं, उनमें भी बहुत थोड़े हैं इनमें बच्चों में जो इन बातों को धारण कर सकते हैं, बाकी कुछ भी नहीं समझते, पिछाड़ी तक भी मूर्ख के मूर्ख ही रह जाते हैं। बाप कितना समझाते हैं, बहुत मीठा बनो, मुख से सदैव रतन निकालने चाहिए, तुम्हारा नाम ही रखा है रूप बसंत,